अन्वय जाकर बेड पर लेट गया। उसने अपने सिर के पीछे बांह रखी और ऊपर लटके झूमर को देखते हुए आन्या के बारे में सोचने लगा। कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई। अगले दिन सुबह वो हमेशा की तरह जल्दी उठ गया और अपने महल के सभी खास पदों पर विराजमान सदस्यों के साथ मंत्रणा कर रहा था। पिछले इतने सालों में क्या और कैसे हुआ वो सब जान रहा था। आन्या सुबह 7 बजे उठी। उठकर आसपास देखा तो अन्वय कहीं नजर नहीं आया। आन्या एकदम उदास हो गई। उठकर बाथरूम गई, फिर फ्रेश होकर आई और किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाई। वो बालकनी में खड़ी होकर बादलों को देखते हुए चाय की चुस्की लेने लगी। कुछ देर बाद अंदर आई, फिर अन्वय को फ़ोन किया, पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। एक बार फिर मुंह लटकाए वो काम करने लगी। कुछ देर बाद नहाकर बाहर आई और ड्रेसिंग टेबल के पास पहुंची तो नज़र वहां रखे पेपर पर गई। उसने पेपर उठाया और राइटिंग देखकर समझ गई कि अन्वय ने ही लिखा है। फिर उसने उसे पढ़ना शुरू किया। सॉरी, तुम्हें बिना बताए जाना पड़ रहा है, पर जाना ज़रूरी है। अब मैं कभी वापस नहीं आऊँगा, तो मेरा इंतज़ार मत करना। आज दोपहर तक विश्वास आएगा घर पर, दोस्त है मेरा, तुम अब से उसी के साथ रहोगी। प्लीज़, बिना कोई नाटक किए उसके साथ चली जाना, यहाँ तुम सेफ नहीं हो। और अब अगर तुम किसी मुश्किल में पड़ी तो मैं नहीं आ पाऊँगा तुम्हें बचाने, इसलिए ध्यान रखना अपना और उसके साथ चली जाना। डरना मत, वो मुझसे भी अच्छा है, तुम्हें वहाँ अच्छा लगेगा। बस इतना ही, अपना ध्यान रखना। अन्वय। आन्या ने लेटर पढ़ा तो उसकी आंखों में नमी तैर गई। उसने लेटर को देखते हुए नाराज़गी से कहा, बहुत बुरे हो तुम, ऐसे कौन करता है? तुमने मुझे प्रॉपर बाय कहने का मौका भी नहीं दिया। बहुत बुरे हो तुम, मैं अब तुम्हें बिल्कुल याद नहीं करूंगी। तुम मेरे सामने आ भी गए तब भी तुमसे बात नहीं करूंगी और कहीं जाऊंगी भी नहीं। यहीं लाए थे ना तुम मुझे, तो यहीं रहूंगी मैं। अब मुझे तुम्हारे या किसी और के किसी एहसान की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। आन्या ने पेपर मोड़कर फेंक दिया और बेड पर पेट के बल लेट गई। रोना आ रहा था पर उसने आंखों से एक आंसू नहीं निकलने दिया। करीब 1 घंटे बाद कमरे का गेट नॉक हुआ। आन्या गुस्से में उठी और गेट खोलते हुए बोली, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं भी, कह दो अपने उस दोस्त। आन्या ने इतना ही कहा था कि सामने खड़े लोगों को देखकर उसकी आगे की बात मुंह में ही रह गई और आंखें हैरानी से फैल गईं। वो हैरान परेशान सी सामने खड़े लोगों को देखती ही रह गई। उसके सामने अजीत जी और कावेरी जी खड़ी थीं। आन्या को देखकर कावेरी जी ने घड़ियाले आंसू बहाते हुए कहा, मेरी बच्ची, कितना ढूंढा हमने तुम्हें, क्यों चली गई थी तुम अपने घर को और अपने मम्मी पापा को छोड़कर? उनके इतना कहते ही आन्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कावेरी जी ने उसे छूना चाहा, पर आन्या ने उनके हाथ को झटक दिया और गुस्से से बोली, प्यार का अपना ये झूठा दिखावा जाकर किसी और के सामने कीजिए, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ और जिनकी हूँ उन्हें भी ये याद नहीं। आन्या ने तिरछी निगाहों से अजीत जी को देखा, फिर आगे बोली, क्या कह रही थी आपकी, मैं क्यों अपना घर और अपने मम्मी पापा को छोड़कर चली गई? तो मिसेस सिन्हा, ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनिए, ना तो वो घर मेरा है, ना ही वहाँ पर मुझे कभी ऐसा लगा कि मेरे मम्मी पापा भी हैं दुनिया में। आप सिर्फ अजय की माँ बनी, कभी भी आपने मुझे अपनी बेटी नहीं माना, और मिस्टर सिन्हा तो मेरे जन्म के साथ ही ये भूल गए थे कि मैं उन्हीं की बेटी हूँ। आप दोनों से मुझे वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी, पर इतना ज़रूर सोचती थी कि कम से कम मेरी शादी तो आप मेरी मर्ज़ी से करेंगे, पर नहीं, वहाँ भी आपने अपनी मर्ज़ी चलाई और उस निहाल के साथ मेरा रिश्ता जोड़ दिया। आपके उस एक फ़ैसले ने मुझे मजबूर कर दिया वहाँ से भागने के लिए। आप भी तो ज़बरदस्ती उससे मेरी शादी करवाकर मुझे उस घर से भगाना ही चाहते थे, अपने सिर के बोझ को उसके सिर पर मढ़कर छुटकारा पाना चाहते थे ना मुझसे। तो मैंने आपका काम आसान कर दिया, आपको मेरी शादी में पैसे भी खर्च नहीं करने पड़े और आपके सिर का बोझ भी उतर गया। जब मैं सब छोड़ आई थी तो अब क्यों आप दोनों यहाँ? उसकी बात सुनकर अब अजीत जी ने सिर झुकाकर कहा, सॉरी बेटा, हमसे गलती हो गई, हमें आपको शादी के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था। आपकी माँ के जाने के बाद हम आपको वो प्यार नहीं दे सके जिस पर आपका हक था, जिसका हमें बहुत दुख है। हमें अपनी गलती का एहसास है, एक मौका दीजिए बेटा हमें, हम आपकी सभी शिकायतों को दूर कर देंगे। अपने घर चलिए बेटा, अब कोई आपको किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करेगा। हाँ बेटा, हम बहुत शर्मिंदा हैं अपने किए पर, आपके जाने के बाद हमें एहसास हुआ कि हमने आपको कितना दुख दिया है, पर बेटा हम आपसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना अजय से करते हैं, बस कभी जाहिर नहीं कर सके। एक मौका दीजिए हमें, हमने निहाल के साथ आपके रिश्ते को तोड़ दिया है, हम अपनी बेटी को वापस अपने घर ले जाने आए हैं, आपके बिना वो घर घर नहीं लगता। हमें माफ़ कर दीजिए बेटा और लौट चलिए अपने घर, अजय भी आपके बारे में पूछता है, एक मौका दीजिए हमें अपनी हलती सुधारने का। दोनों के नाटक का आन्या पर कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने निगाहें फेर ली पर वे इमोशनल होने का नाटक करने लगे। आन्या कुछ देर खामोश खड़ी रही, फिर जब दोनों उसके पैर छूकर माफ़ी मांगने लगे तो वो पिघल गई। वैसे भी यहाँ अन्वय नहीं था तो यहाँ रहने की कोई वजह नहीं थी उसके पास, और दोनों की बातों से उसे लगने लगा कि वे सच में सुधर गए हैं और अब उसे उनका प्यार मिलेगा जिसके लिए वो बचपन से तरसती आई है। यही उसने गलती कर दी और इमोशनल होकर उनके साथ जाने के लिए हाँ बोल दिया। विश्वास जब वहाँ आया तब आन्या सब सामान पैक कर रही थी।
उसने उसे बता दिया कि वो अपने मम्मी पापा के साथ जा रही है, तो वो मुस्कुराकर वापस चला गया। आनिया उनके साथ वहां से निकल गई। शाम को वो अपने घर पहुंची और जैसे ही अपने कमरे में गई, कावेरी जी ने बाहर से गेट बंद करते हुए चिल्लाकर कहा, एक बार फिर तू मेरे जाल में फंस गई। तुझे क्या लगा था तू हमारे मुंह पर बदनामी की कालिक पोतकर वहां गैर मर्दों के साथ अय्याशी करेगी और हम तुझे छोड़ देंगी? अब तो तू यहां से बाहर तभी निकलेगी जब निहाल बारात लेकर हमारे दरवाजे पर आएगा तुझसे शादी करने। 3 दिन, बस 3 दिन, उसके बाद हमारे सिर से ये बोझ उतर जाएगा और उसके बाद निहाल तुझे बताएगा कि जो तूने किया उसकी क्या सजा मिलती है तुझे। बेचारी आनिया कुछ समझ ही नहीं पाई और एक बार फिर उसी पिंजरे में कैद हो गई जहां से वो 2 महीने पहले भागी थी। उसकी आंखों में नमी तैर गई। गुस्से में उसने सब सामान यहां से वहां फेंक दिया और जमीन पर धम से बैठकर रो पड़ी। अन्वय के साथ बिताए पल उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। इस वक्त उसे अन्वय की बहुत याद आ रही थी, पर वो इतनी मजबूर थी कि उसे फोन तक नहीं कर सकती थी, क्योंकि फोन तो कावेरी जी ले गई थी। वो वहीं बैठकर अन्वय के बारे में सोचने लगी।